नमोस्तु पूर्वानेक्षी स्वाध्याय विलयम श्री शुद्धभक्ति गाय सुगम करोमि ओकारो बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञान तिमरां ध्यानां ज्ञानां जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम पराचारि गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवनं प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरं रक्षावकाचारनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्। तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा। तेषां वचनोनुसारमासाद्य श्रीमत् समंत भद्राचार्य देवैर्विरचितम्। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभाष्यर्थं गणहरदेवैः गन्तव्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमगो वयं शिरसा। इच्छामि भन्ति सुदभक्ति काउ सर्गो को तस्सालोचन अंगुरंगुपैं नेपाऊ नेपर्यम्नि सुतपणिमानि ओगुगे चूलिया चै सुतथेथुविधं कायं सामिच्छुकालमुञ्चिमि पूजिमि वन्दामि नमंसामि। दुःख को कम को वैलाव सुगैगं समायमिन्नं जिनुं सम्पत्तिगो मोक्षं। नमोस्तु पूर्वानेक्षी स्वाध्याय विलयम श्री आचार्य भक्ति का सुगम करो। शुद्ध जलदीपारगेभ्या स्वपरमत विभावना पटुमतीभ्या सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या। छत्तीस गुण सम्मग्गे पंचविहाचार कर्म संदर्शे शिष्यानुदे कुशले तुम्हारी सदा वंदी। गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सागरं घोरं शृण्वन्ति यक्षगणं दैन्यं मरणं न पावयन्ति। ये नित्यं व्रतमन्त्रः मनरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपो धनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्राहरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका Thank you. श्रीमद् भद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। एक दिन शुरुआत की थी कि एक श्रावक अपने जीवन को किस तरह व्यवस्था दे कि जिससे उसके कुछ क्षण धर्म के साथ बीतते हैं और वो अपने पाप को कम कर सके। श्रावक पूरी तरह से पांचों पापों से नहीं बच पाता है और वो आंशिक रूप से उन पापों से बचना चाहे तो क्या उपाय है। यही श्रावक धर्म है। जब वो पापों से बचने का उपाय करने लगता है तो वो उसका श्रावक धर्म कहलाता है। अब पापों से बचने का किस तरह उपाय करे वो, तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं दी हैं। सबसे पहले तो उसे इस बात की श्रद्धा करनी पड़ेगी कि राग द्वेष मेरे विकारी भाव है, मेरा स्वभाव इनसे कुछ पृथक है। ऐसी उसे श्रद्धा करनी पड़ेगी, जिसको आपा परका भेद विज्ञान कहते हैं या कि सात तत्वों का सम्यक श्रद्धान कहते हैं। संबंध भद्र स्वामी ने इन दोनों परिभाषाओं को एक बड़ी परिभाषा में गर्भित कर दिया है और उन्होंने कहा कि सदृष्टिज्ञान श्रद्धानं परमार्थानां आत्मवं तपोभृतां त्रिलोकपूर्ण अष्टांगं सम्यक दर्शनं अस्मयं। अहंकार से रहित जो सम्यक दर्शन है वो ही सच्चा है, जो तीन मूर्ताओं से रहित आठ अंगों से युक्त है। लेकिन है क्या वो, कितने श्रद्धान है, किस पर? सच्चे देवगुरु शास्त्र पर। परमार्थ भूत जो श्रद्धा है सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति, वो सम्यक दर्शन है। यहां से उसके जीवन में धर्म की शुरुआत होती है। फिर सम्यक दर्शन के साथ जो भी ज्ञान होता है वो सब सम्यक ज्ञान कहलाता है। और मूल तिमराप हर में दर्शन लाभा अवाप्त संज्ञान है रागव देश निवृत्ति चरण प्रतिपद्धति साधु। जिस दिन आंख खुल जाती है, रास्ता मालूम कर जाता है, उसके बाद जो बुद्धिमान है वो उस रास्ते पर चलना शुरू करता है। क्योंकि बुद्धिमानी इसमें है कि रास्ता मालूम कर जाने पर और श्रद्धा हो जाने पर। सबसे बड़ी चीज, रास्ता तो कई लोग बता सकते हैं, रास्ता कई लोगों को मालूम हो सकता है, लेकिन अगर चलता नहीं है तो उसका मतलब है कि या तो उसने ठीक ठीक जाना नहीं है या फिर उसकी श्रद्धा नहीं है। क्योंकि जिसकी श्रद्धा हो जाएगी वो चले बिना नहीं रहेगा। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक छोटे से बेटे के हाथ में अगर हम चॉकलेट पकड़ा दें और जब तक उसे हमें मालूम की बहुत मीठी चीज है और खाने की है, तब तक भले वो हाथ में नहीं है, लेकिन जैसे एक बार वो चख के देखता है और उसको मीठी लगती है, आप उसका हाथ पकड़ो चाहे उससे कुछ भी कहो कि अब बाद में खाना है, वो तो आपकी आंख बचा के खा लेगा उसको। ठीक ऐसे ही एक बार श्रद्धा हो जाती है कि मेरा मोक्ष मार्ग क्या है, मेरे सच्चे योगगुरु शास्त्र क्या है, उनके प्रति जैसे श्रद्धा होती है तो फिर मैं कोशिश करना शुरू करता हूं कि मैं वहां तक पहुंचूं, मैं ही उस ऊंचाई को प्राप्त करूं। ऐसी सब बातें करनी पड़ी थी। ज्ञान जो हमने अर्जित किया है इन दिनों में उसका फल क्या मिला हमको, यह हमें देखना पड़ेगा। पहले दिन भी हमने कहा था कि ज्ञान की शुरुआत करने से पहले हम तय कर लें कि यह यात्रा कहां तक जाकर के पूरी होगी, जो यात्रा पूरी होगी इस जगह जाकर के कि हम अपने अज्ञान को कम कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। यह हमारा ज्ञान का फल है कि हमारा अज्ञान कम हुआ है। बहुत सारी भ्रांति हमारे मन में थी, बहुत सारी उलझनें थी, क्या वो उलझनें कम हुई हैं या कि हमारी भ्रांतियां दूर हुई हैं या थोड़ा सा हमारा अज्ञान घटा है। बड़े से बड़ा अज्ञान यही है कि हम इस शरीर को अपना मान के इसके साथ व्यवहार करते हैं। और सच्चा ज्ञान तो यह है कि जिस दिन हम शरीर को अपने से अलग मान के इसके साथ व्यवहार करना शुरू कर देते हैं वो ज्ञान की उपलब्धि होती है। तो मैं सोचता हूं कि शायद आपने ऐसा कुछ किया होगा, अपने शरीर की सेवा टहल सिर्फ इसलिए की होगी कि इससे मुझे अपने आत्मा के विकास के लिए मौका मिलेगा, बस इतना ही। वरना तो पूरे जीवन इसकी सेवा करते रहिएगा, संसार की सामग्री जुटाते रहिएगा, तब भी कम पड़ेगी, तब भी कम पड़ेगी। किसी व्यक्ति ने लिखा है कि जिसकी आकांक्षाएं हैं उसे मैं पूरी दुनिया भी दे दूं तब भी वो कम पड़ेगी, और किसी व्यक्ति की कोई आकांक्षा नहीं है तब मैं उसे दुनिया दे तो वो उसकी कोई काम की नहीं रहेगी। जिसकी आकांक्षाएं हैं वो पूरी दुनिया को पाने के बाद भी पूरी नहीं हो सकती है। हमने इन दोनों में यही कोशिश की होगी कि हम अपनी इच्छाएं कम करेंगे, अपनी आकांक्षाएं कम करेंगे। कौन सी वाली आकांक्षाएं, जिनसे शरीर का पोषण होता है,
जिससे आत्मा की पुष्टि होती है वो आकांक्षा बढ़ा देंगे, जिससे आत्मा संभवती है वो सब कुछ हम करेंगे। ये तुम्हारे अज्ञान की हानि कहलाएगी, और राग द्वेष की कमी होना यह ज्ञान का फल है। ये बहुत कठिन है, ज्ञान हो जाने के बाद भी राग द्वेष कम होना बहुत प्रयत्न साध्य है। अकेले ज्ञान होने से राग द्वेष कम नहीं होता, उसके बाद बहुत उपाय करना पड़ता है। कहते हैं इसलिए ज्ञान प्राप्ति करें हम तो ध्यान रखें कि मेरे को राग द्वेष कम करना है, उलझन कम करनी है, जीवन को आसान बनाना है। और तीसरी बात, प्रीति जायते, ज्ञान का फल है। प्राणी मात्र के प्रति हमारे जीवन में मैत्री भाव आना चाहिए, अपने पास पड़ोस को हम अभयदान दे सकें, निश्चलता दे सकें, और उसे अपने आत्मीयता दे सकें। शायद ये हमारे ज्ञान का एक बहुत बड़ा फल है। और भी कई जगह आचार्य भगवंतों ने लिखा है, जेन राधा वरत जेज्य, जेन मिट्टी प्रभा सेज्य, जेन तत्पंग जेज्य, तम नानम जिन शासने। जिनमें भगवान के शासन में तो ज्ञान उसे कहा है जिससे राग द्वेष कम होता है, जिससे मैत्री बढ़ती हो और जिससे तत्व का बोध होता हो। जेन तत्पंग जेज्य, जिससे आत्म तत्व की प्राप्ति होती हो, वो ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। मैं मान के चल रहा हूं कि हमें भगवान ने जो सच्चा ज्ञान दिया है, हमने उसका अपने जीवन में थोड़ा बहुत लाभ उठाया होगा। यहां तक अपन आए हैं कि सच्चा ज्ञान होने के बाद क्या आचरण होना चाहिए, पापों को कैसे कम करेंगे। तो कहते हैं पापों को कम करने का एक उपाय है कि अपना समय धर्म ध्यान में लगाना शुरू कर दे, क्योंकि पाप को छोड़ना बहुत मुश्किल है। धर्म में लग जाओ तो पाप छूट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। हमें तो समय ही नहीं मिले हमको पाप करने का, तो कितना मजा रहेगा। हमको खाली बैठते हैं तो सिवाय पाप की और कुछ नहीं सोचता, अध्ययन रहे तो धर्म के कुछ नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि हम धर्म ध्यान में लग जाए। तो धर्म ध्यान में लगने के लिए आवश्यक है कि हम पांचों व्रत का पालन करें, तीन गुणव्रत का। गुणव्रत के पालन करने से क्या होता है, एक निश्चित सीमा के भीतर ही हम पाप करेंगे, उसके बाहर तो हमारा हम निश्चिंत है, हमको वहां कोई करना नहीं है, पापकारी करने के लिए जाने नहीं है। तो सारे पाप से हम अनायास बच जाते हैं, इसलिए गुणव्रत आवश्यक है। और शिक्षा व्रत में और हमने अपनी सीमाएं बांध ली, लिमिटेशन कर ली, तो उससे और अधिक हम पाप से बच गए। इस तरह से हमने 12 व्रतों का स्वरूप समझा था। इसमें मुख्य तो यही है कि परिग्रह का जो परिमाण कर लेता है, जो संतोष धारण कर लेता है, वास्तव में वही सफल है। जितना आपके जीवन में संतोष है, शायद उतना ही धर्म ध्यान आसानी से होगा। असंतुष्ट व्यक्ति, अपने जीवन से असंतुष्ट व्यक्ति धर्म ध्यान नहीं कर सकता। वो तो संसार की चीजों में संतोष खोजता है, तो वो उन चीजों को पाने की कोशिश करेगा, क्योंकि असंतुष्ट है। और जब तक पूरी चीजें नहीं मिल जाएंगी तब तक संतुष्ट होगा नहीं, और पूरी चीजें किसी को अपने जीवन में मिलती नहीं है, इसलिए वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा और पूरा जीवन व्यर्थ निकल जाएगा। कहते हैं अगर धार्मिक होना है तो पहले तो पहली शर्त है, आप अगर धार्मिक होना चाहते हैं तो संतोषी तो बनना पड़ेगा। मिला तो मिला, नहीं मिला तो ठीक है, जो मिला है वो पर्याप्त है। ऐसा हमारे भीतर भाव आ जाना चाहिए अनायास, किसी के कहने से नहीं, मजबूरी में भी नहीं कि अब नहीं मिला है इसलिए रो धो करके जितना है उसी में निकाल गए। नहीं मिला ठीक, खुशी हम इसके बावजूद भी खुश हैं कि नहीं मिला, जो मैंने सोचा था कि ये मिलेगा नहीं मिला, मैं फिर करूंगा ट्राई। लेकिन जो मिल गया है मुझे, वो क्या कमती है क्या? मुझे दो आंख मिली किसी पुण्य की वजह से मिली होगी कि मैं देख पाता हूं, मुझे दो कान योग्यता मिली हुई, मुझे शरीर मिला हुआ और वो मनुष्य का शरीर मिला, ये कमती बात है क्या? ये कम मिला है क्या? एक गरीब साधु है, रोता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो एक फकीर वहां से निकला साधु, तो उसने कहा कि तेरे पास कुछ नहीं है, पर लगता था बहुत कुछ है। बोले आप भी मुझे इस तरह मजाक कर रहे, मेरे साथ गरीब आदमी है इसलिए सब मेरे साथ मजाक करते हैं। उन्होंने तेरे पास तो बहुत दौलत बहुत संपत्ति मैं देख रहा हूं सामने सामने, तो उसने कहा आप क्यों आपको इस तरह मुझे परेशानी में डाल रहे हैं, बताइए है क्या मेरे पास। बोले तू तैयार हो गया अगर बेचने को तो मैं बिकवाए देता हूं। तो उसने कहा कि बड़ी अजीब बात है, मेरे पास है कुछ नहीं, और कह रहे कि बिकवाए देता हूं, क्या है चीतरे कौन खरीदेगा, मेरे पास तो चीतरे हैं। बोले तू पहले तय कर ले कि बेचना है कि नहीं, बात में मत कहना कि नहीं बेचना। तो बोलते कि चलो बेचता हूं, ये भी अगर बेचते हैं तो ये बेचते हैं। वो ले गए राजा के पास साधु उसको, और राजा से इशारा कर दिया कि जरा मामला कुछ दूसरा है और आप तो मैं जो कहूं उसको ओके कर देना। तो राजा भी मान गया और फिर उसने शुरू किया फकीर से कि उस भिखारी से कि देख फिर से एक बार सोच ले, तेरे को देना है कि नहीं देना, तेरे पास जो माल है वो बेचना है कि नहीं, माला माल हो जाएगा लाखों रुपये दिलवाऊंगा मैं। तो उसने कहा राजा के सामने भी आप इतनी बहुत बात कर रहे हैं, मेरे पास है क्या जो मैं दे सकता हूं? पर
अगर कुछ आपको लगता है मेरे पास है तो मैं बेचने तैयार हूं। तो फौरन साधु ने कहा कि अच्छा, तुम अपना एक हाथ देने तैयार हो, मैं तुम्हें राजा से कह के 2 लाख रुपए दिलवा सकता हूं। राजा ने कहा हाँ, मैं बिल्कुल दे सकता हूं, एक हाथ दे दो तुम। और अगर दोनों देते हो तो मैं 5 लाख दे सकता हूं, अगर 8 देते हो तो 20 लाख रुपए देता हूं। उसने कहा मानना क्या है, मुझे कहां लेके आए हो, क्या करते हो मेरे साथ, मजाक तो पहले ही कर रहे थे और अभी ये बड़ी बड़ी मजाक कर रहे हैं। तो उसने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तो तुम्हें रियलाइज करवा रहा हूं ये चीज कि तुम जो कह रहे थे ना कि मेरे पास दौलत नहीं है, अगर वही चाहिए तो होता रहे सौदा कर लेना, एक हाथ दे तो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, 2 दे तो 5 मिल जाएंगे, अगर दोनों पैर देते हो तो 10 दिलवा देते हैं, और 8 देते तो 20 लाख दिलवा देते हैं। इसका मतलब है कि करोड़ों रुपए की संपदा लेकर के तुम बैठे हो, फिर भी अपने को कह रहे हो कि मैं बहुत छोटा हूं, क्या इसको तुम करोड़ों रुपए बेच सकते हो? नहीं बेच सकते, ये तो अमूल्य है, ये अमूल्य जीवन मिला हुआ है, मनुष्य जीवन अमूल्य है। सबसे बड़ी चीज तो वो ये समझाना चाहता था कि हम किस बात की अपेक्षा रखते हैं दुनिया से, नहीं, संतोष धारण करने के लिए यही विचार करना चाहिए कि मुझे इतना कुछ तो मिला। असल में असंतोष इस बात का रहता है कि दूसरे को हमसे ज्यादा मिला। आज हम लोग बैठ के कई बार बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सच ऐसा हुआ है कि व्यक्ति ने अपना सोच बदल दिया है। अब वो व्यक्ति की प्रतिष्ठा इस बात में है कि उसके पास क्या क्या है, व्यक्ति क्या है इसमें प्रतिष्ठा नहीं है, व्यक्ति के पास क्या क्या है। एक जगह लिखा है कि आपके पास क्या क्या है इससे आपकी कीमत नहीं है, आप कैसे हैं इससे आपकी कीमत है। आपके पास कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी क्वालिटी है, आपके अनंत गुण हैं आत्मा के, क्या उन अनंत गुणों में से किसी एक गुण को भी आपने विचार करके और अपने भीतर प्रकट करने की कोशिश की है? अगर किसी एक गुण को भी आपने प्रकट किया है अपने भीतर तो मानिएगा कि आपका पूरा जीवन कीमती है, और सैकड़ों चीजें भी कीमती कीमती रख लीजिएगा फिर भी कोई आपके जीवन की कीमत नहीं होगी। तो संतोष कहते ना, सबसे बड़ो धन संतोष धन, गज धन क्या क्या वो बोलते हैं, हाँ बाज धन, सब कुछ होने के बाद भी कहते हैं कि बड़े से बड़ा धन अगर है तो क्या है, संतोष धन है। और वहीं से शावक के जीवन की शुरुआत होती, ये सारे व्रत नियम संयम कहे के लिए हैं, उसी एक संतोष आत्मसंतोष इनर फुलफिलमेंट जिसको कहते हैं आज की भाषा में। मजा ये है कि ये सारी चीजें मैं देखता हूं आजकल इतनी बुक्स निकलती हैं फॉरेन की, उनमें इन्हीं सारी चीजों को इंटरप्रेट किया जा रहा है, इनर फुलफिलमेंट, हाउ टू गेन इनर फुलफिलमेंट। अब किताब ही निकल गई, एक आत्मसंतोष पाने के लिए आप क्या क्या करें, उसमें बहुत सारी चीजें, नो बाई सेल्फ, अपने को जानना शुरू करो, वो कहते इमोशनल होना शुरू करो, संवेदनशील होना शुरू करो, बौद्धिक मत हो, इमोशनल इंटेलिजेंस, आप जो है बुद्धि की इंटेलिजेंस को बुद्धिमान होने को इंटेलिजेंसी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं संवेदनशील होना ही इंटेलिजेंसी है, बुद्धिमानी है। इस तरह वो वापस लौट रहे हैं उन्हीं सब चीजों पर जो हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें इतनी आसानी से विरासत में दे दी थी। मगर हम लोगों के साथ ये है कि जो चीज फोकट में मिल जाती है उसकी हम वैल्यू नहीं कर पाते हैं, और जो बहुत मुश्किल से पाते हैं उनको उस चीज की कीमत है। जर्मनी में शायद एक आध कोई आदमी मिल जाएगा जो संस्कृत नहीं जानता हो, आप आश्चर्य करेंगे, जर्मनी के लोगों को संस्कृत का इतना चाव है, सारे ग्रंथ वो संस्कृत के। मैं तो दंग तब रह गया था जब कलकत्ते में एक जर्मनी मिलने के लिए आया और उसके बाजू में जो है मैंने देखा इंग्लिश में गोमट सार जीव कांड कर्म कांड दबा हुआ था। मैंने कहा क्या पढ़ रहे हैं, बिल्कुल हिंदी में, उसने मुझे संस्कृत में जवाब दिया, गोमट सार कर्म कांड जीव कांड पढ़ रहा हूं, भले इंग्लिश डिस्क्रिप्शन है लेकिन ओरिजिनल जो गाथा है उसको, ओरिजिनल गाथा है और उनकी छाया संस्कृत की, प्राकृत गाथा और संस्कृत की छाया उसको याद है, और हमें तो शायद एक भी गाथा नहीं आएगी उसमें से, हमने तो कभी शायद खोल के भी नहीं देखा होगा कुछ लोगों ने, क्योंकि उमर साल क्या होता, कर्मकांड क्या होता, जीवकांड क्या होता। एक बार अपने आचार्यों के लिखे हुए ग्रंथों के सामने, हमने एक एक ग्रंथ के सामने एक एक दफे माथा तक नहीं टेका होगा, उसको खोल करके देखने की तो दूर रही। और शायद 15 दिन में आने वाली एक इंडिया टुडे या और कोई गंदी सी मैगजीन, उसके पन्ने रोज पलटे होंगे कि शायद कुछ गंदगी दिख जाए। नहीं करते ऐसा, मैं थोड़ी सी कड़ी बात बोल दूं तो एक्सक्यूज करिएगा, हम कर रहे हैं ऐसा, हम अपने बच्चों को ऐसा ही करने के लिए कह रहे हैं और वो
वे कर रहे हैं, वे भी कर रहे हैं। आने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत चिंता लगने लगी है, ये इतने से लोग, ये तो संभले हुए लोग हैं, इन्होंने तो अपना जीवन ठीक कर लिया, लेकिन अभी और हैं बहुत से लोग, इनके लिए हम क्या संदेश देंगे, उनको कैसे हम ये भीतर में उनको रियलाइज करवाएंगे कि जो हमें मिला है वो कितना कीमती मिला हुआ है। कल कोई हमें उसे दूसरी तरह की थाली में परोस देता है, हम खुश हो जाते हैं, और हमारे यहां पर इन इस थाली में परोसा है, हम उसको खाने की तैयारी नहीं है। वो गंदी से गंदी चीज अगर होटल में खिला दे, देगा बहरा और बेमन से खिला देगा तो खा लेंगे, प्यार से अपने मां के हाथ की बनी रोटी खाने की आदत छूट गई। मैं आपको आश्चर्य करूं, ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी सी हैं, ये व्रत नियम संयम हमारे जीवन में आएंगे और हमारे जीवन से उनको संदेश मिलना चाहिए। अकेले व्रत नियम संयम करने का कोई मकसद नहीं है, उनसे संदेश क्या दे रहे हैं, हमने अपने आसपास के वातावरण को कैसा किया है। एक ललितपुर की बात है, मैं आहारपुर की लौट रहा था तो एक स्टूडेंट था, वो यंग लग रहा था और लेकर के मेरा कमांडर चला, तो मैं बात करते हुए जा रहा था, उसकी बातचीत से लगा कि ये पढ़ा होना चाहिए, ग्रेजुएट तो होनी चाहिए। तो मैंने पूछा कि आपने क्या करा, तो बोलता है बी, मैंने इंजीनियरिंग किया है, बीए किया है, ये 87 की बात है, मानिएगा आज से 10 साल पहले भी बीए की कोई क्रेडिट होती थी, आज तो खैर सब चीज बहुत नई हो गई। तो मैंने कहा फर्क क्या कर रहा हूं, बोले परचून की दुकान है मेरी, हाँ परचून मतलब वो क्या बोलते हैं किराने की दुकान, वो किराने की दुकान है। मैंने कहा सर्विस नहीं करी, माँ सर्विस छोड़ दी, क्यों छोड़ दी, माँ का सोना वापस ले आया। मैंने कहा पहली मत बुझाइए, ठीक ठीक बताइए क्या हुआ आपकी लाइफ में। बोले मैंने बीए किया, बीए करने के तुरंत बाद मुझे साल भर के भीतर भीतर एक बढ़िया इंजीनियर की पोस्ट मिल गई, मैंने वो नौकरी 3 साल करी। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा जो प्यून है वो मुझे ठीक ठीक खाना खिलाए। मेरे घर में नई आदत थी कि मैं बचपन से घर में रहा तो पैर धोकर के भीतर आना, अपनी थाली अपने हाथ से लगाना, अपना पाटा रखना और फिर प्यार से मां से भोजन करना। अब वो जो मैंने प्यून लगा रखा था बनाने वाला, वो बहुत गंदगी करता था, मेरे से खाया नहीं जाता था, जहां अवस्था बन जाती थी वहां तो ठीक 3 साल तक थे, तो मैं परेशान होता रहा। फिर एक दिन मैंने कहा कि ऐसा क्या, इस पैसे का क्या करूंगा, जिससे भी ठीक से भोजन नहीं खा पाता हूं, शुद्ध भोजन नहीं मिलता मुझे, कहां कहां भटकता करूंगा, कहां कहां मेरी सर्विस लगेगी, ना भगवान का मंदिर मिलता ना ठीक से खाना मिलता। मैंने कहा कि छोड़ो ये झगड़ा, इसीलिए पढ़ा था मैंने इसलिए नहीं पढ़ा था ये पढ़ाई, इसलिए मैंने आपसे कहा ना। उसने मुझसे कहा कि मां का सोना मुझे वापस ले आया, अब मैं यहां पर आराम से एक किराने की दुकान चलाता हूं, अपने खाने लायक पैसे कमाता हूं और मां के हाथ का बना प्रेम से दोनों टाइम शुद्ध भोजन करता हूं और बहुत सुखी हूं मैं। लोग मेरे जरूर कहते हैं कि एमी बीई करने के बाद किराने की दुकान पर बैठे अच्छा नहीं लगता, तो मैं कहता हूं कि मुझे बेईमान बनना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें शायद वो मेरा पढ़ना अच्छा नहीं लगता होगा, पर आपको परचून की दुकान पर बैठना अच्छा नहीं लगता, बेईमान बनना अच्छा लगता। उसके बाद देखिएगा, तो आज भी ऐसी पीढ़ी है एक जो कि इस बात के लिए तैयार है कि हम अपने धर्म, हमारा अपना राइट है, हमारा अपना अधिकार है और वो धर्म हमारे जीवन में उतरना चाहिए। किताब में तो लिखा हुआ है, हमारे जीवन में कितना प्रकट होता है, इसके लिए ये सारी चीजें हैं। पिछले दिनों पढ़ रहे थे कि एक श्रावक किस तरह से अपने आत्म विकास की श्रेणियां चढ़ सकता है, प्रतिमाएं ग्रहण करता है और एक एक करके अपने स्टेप भगवान की तरफ रखता चला जाता है। मैं तो ये मान के चलता हूं कि प्रतिमाएं एक एक कदम भगवान की तरफ, भगवान की तरफ मतलब अपने ही तरफ। अपने यहां पर बड़ा मजा है, जब अपन कहें कि भगवान की तरफ जा रहे हैं, परमात्मा की तरफ, तो मानिएगा अपने आत्मा की ही अंतिम दशा, चरम विशुद्ध दशा पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं अपन। तो ये श्रावक की इस तरह की प्रक्रिया है कि वो कैसे क्रम क्रम से अपने आत्म विकास को करे और अपने उस परमात्म पद को प्राप्त करे। इसके लिए अपन ने पढ़ी थी कि पहली वाली प्रतिमा में क्या करता है, वो अमोक्ष का त्याग कर देता है, मर्यादा में बंध जाता है, मर्यादा का भोजन करना, मर्यादा में ही बोलना, मर्यादा में ही सारी क्रियाएं करना, सबके पीछे उसके एक मर्यादा आ गई और वो दार्शनिक श्रावक कहलाने लगा, क्योंकि उसके भीतर आ गया है कि संसार शरीर और भोग इन सब के प्रति उसको जो वास्तविकता है वो मालूम पड़ गई है। पंच गुरु चरण शरणा, 5 पापों की शरण नहीं है, अभी तक तो 5 पापों की शरण ले रखी थी, अब 5 परमेष्ठी की शरण ले ली है, 5ों पापों से बचना शुरू कर दिया है।
जिसने पंच परमेष्ठी की शरण ले ली इसका मतलब है कि वो पांच पापों से बचना शुरू कर रहा है। तो ये पहली प्रतिमा लेता है, उसमें इतनी चीजें करना पड़ती हैं, उसके लिए अपने आप अनायास भीतर आ जाती है। अपन करने की भाषा जानते हैं असल में, इसलिए ऐसा बोलना पड़ता कि इतना इतना करोगे तो पहली प्रतिमा नहीं, पहली प्रतिमा आई तो इतना इतना अपने आप होना शुरू हो जाता है, इतनी करूंगा इससे ज्यादा नहीं करूंगा। फिर दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत आ जाते हैं, 3 गुण व्रत भी आ गए, 4 शिक्षा व्रत भी, 5 अनुव्रत तो थे ही, या कि ये कह लीजिएगा कि उसके अपने व्रति श्रावक जिसको कहते हैं, 12 व्रत होने पर व्रति श्रावक। व्रत ले लेने के बाद ये ध्यान रखना सिर्फ एकमात्र देवायु बनती है, बाकी 3 आयु नहीं बनती। दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा जिसने ले ली है, या तो उसके देवायु का बंध हुआ है और या फिर जो है आगे होगा तो देवायु का बंध होगा, इसके अलावा और किसी आयु का गति का बंध नहीं होगा। ये डिक्लेरेशन है कहना चाहिए आचार्य भगवंतों का। और जिसके व्रत नियम संयम लेने का भाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब है या तो उसकी नरक आयु बंध गई है या फिर आगे नरक आयु बंधने का उपाय कर रहा है। ये ऐसे कुछ डिक्लेरेशन डरवाने के लिए नहीं है, फैक्ट्स हैं कि हम समझें इस चीज को, क्योंकि व्रत नियम संयम नहीं ले पाने के पीछे कम से कम परिग्रह परिमाण में ले जाने के पीछे क्या होता है, हमारी आशक्ति तो है, कहीं ना कहीं छुपी हुई आशक्ति तो है। और कहते हैं जितना आरंभ और परिग्रह हम करेंगे नरक आयु के बंध का कारण, बहु आरंभ परिग्रह तो नारकर्ष आयुषा लिख करके एक बिल्कुल दरवाजा खुले और घर में एंटर हो सामने एक लिख के रख लेना चाहिए ताकि सुबह शाम आते जाते दिख जाए कि मैं ये जो मैं हूं बहुत आरंभ बहुत परिग्रह करूंगा तो नरक जाऊंगा, ऐसा लिख करके रख ले। कोई लगता है ऐसा? शायद किसी ने नहीं रखा होगा अभी तक, क्योंकि यह तो सूत्र है, सूत्र जी का बहु आरंभ परिग्रह तम नारकर्ष आयुषा, तो उसको अपनी भाषा में लिख दो, ये जो मैं हूं इस घर का मालिक बना फिरता हूं, ये जिस दिन बहुत आरंभ बहुत परिग्रह करूंगा तो मैं नरक जाऊंगा। जो भी आएगा वो पढ़ेगा और वो स्वयं भी अपन पढ़ेंगे, शायद किसी को अपने मन में आए कि नहीं संतोष धारण करना है, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नहीं करना, व्रती बनने में ज्यादा कुछ नहीं है, इतना मन को समझाना है, दूसरी प्रतिमा ले लेता है। तीसरी प्रतिमा में, दूसरी प्रतिमा में तो 2 बार सामायिक का था कि करना ही है, 2 बार सामायिक करेगा पूरे मन से, अब सोचता है कि नहीं तीसरी बार भी मेरी गुंजाइश है, मैं तीसरी बार भी करूंगा, तो तीनों संध्याओं में सामायिक करने का नियम कर लेता है, ये तीसरी प्रतिमा हो जाती है। फिर उसके बाद अष्टमी चतुर्दशी को प्रोषत उपवास करना शुरू करता है, नियम से करता है, दूसरी प्रतिमा में भी करता था पर कृत कार्य तन्मोदना मन वचन काय इन सब 9 कोटि विशुद्धि पूर्वक नहीं करता था, कभी कभी दोष लग जाते थे, अब तो उसने तय कर लिया है कि नहीं पूरे मन से वचन से शरीर से कृत कार्य तन्मोदना सब विशुद्धि पूर्वक करूंगा। तो ऐसे चौथी प्रतिमा उसके जीवन में आ जाती श्रावक के। फिर उसके बाद सचित्त चीजें नहीं खाऊंगा, जो चीजें अचित होंगी प्रासुक होंगी, प्रासुक मतलब बैक्टीरिया रहित, उसको जो प्रक्रिया होती प्रासुक करने की वो करके फिर उसके बाद ग्रहण करूंगा, तो इससे कितना लिमिटेशन हो गया। पांचवी प्रतिमा हो गई सचित्त त्याग, अब कोई भी चीज बिना प्रासुक किए नहीं लेंगे, जो प्रासुक होगी वही लेंगे, तो अपने आप लिमिटेशन हो गया। फिर उसके बाद अभी तो जो है किसी को रात में खिला भी देते थे, खुद भी नहीं खाते थे भले ही पर बना भी देते थे, अब तो ना खाएंगे ना खिलाएंगे ना बनाएंगे, ना कोई खाता होगा तो उसके समर्थन करेंगे। रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा छठी प्रतिमा में जाकर के एकदम सब तरह से त्याग हो गया, अभी जिसके साथ संबंध था तो उससे संबंध रखा था, सातवीं प्रतिमा में जाकर के उससे भी संबंध जो है वो अब भाई बहन की तरह और अपने पूरे जीवन रहेंगे ब्रह्मचर्य जीवन में घटित हो गया। सातवीं प्रतिमा आ गई, बहुत पाप करना पड़ता है कमाने के लिए, जितना कमा लिया उतना ही ठीक है, अब नया नहीं कमाऊंगा, आरंभ का त्याग करता हूं, पाप का त्याग, आरंभ मतलब पाप पूरी तरह से जो उद्योग करने में पाप होता था उसको, लेकिन जिसमें पाप नहीं होता है उसको नहीं छोड़ेगा, अपने लिए भोजन तो बनाएगा, बना सकता है, और पूजा के बर्तन इत्यादि पूजा की द्रव लगाएगा, पूजा के लिए जो है पानी गर्म करेगा, द्रव धोने के लिए सब का काम है, वही चावल भैया अपने भात बनावे के लाने धोए जात, वो भी भगवान की पूजा को चढ़ावे धोए जात, अब बताओ दोनों में फर्क है कि नहीं, मानसिकता का कितना फर्क है, वो अपने भात बना करके खाने के लिए और बढ़िया स्वादिष्ट बने इसलिए अच्छे से धो रहा है, और ये इसलिए धो रहा हूं भगवान के चरणों में चढ़ाऊंगा, मेरे पास है क्या, मैं अपने अहंकार ममकार को छोड़ूंगा इसलिए धो रहा हूं। दोनों क्रियाएं होती हुई भी आपने शायद वो किस्सा नहीं सुना कि 3 व्यक्ति पत्थर तोड़ रहे हैं, पहला वाला क्या कहता है, कि दिखता नहीं है पत्थर तोड़ रहा हूं, दूसरा कहता मालिक पेट के लिए कुछ कुछ कमाने के लिए कुछ कर रहा हूं, तीसरा बोलता है पत्थर थोड़ी तोड़ रहा हूं ना पेट भरने के लिए कुछ कर रहा हूं, मैं तो भगवान का मंदिर बना रहा हूं। पत्थर तीनों तोड़ रहे हैं, तीनों की मानसिकता अलग अलग, तीनों को कर्म का बंध भी अलग अलग होगा। ठीक इसी तरह ये क्रियाएं हैं। तो कहते हैं कि पाप क्रिया जिससे संसार बढ़ता हो वो क्रिया करेंगे तो पाप लगेगा, और अगर आपने ऐसी कोई क्रिया नहीं की है, धार्मिक क्रिया की है, उससे लगने वाले पाप को पाप नहीं कहा है। तो ऐसे आरंभ को भी छोड़ देता। मेरे ख्याल से कल जो है आरंभ त्याग तक 23 नंबर तक हो गई थी, 23 पूरा हो गया, 24 से करना है ना कि 23 भी करना है, किसी को ख्याल? परिग्रह त्याग, ठीक, ये यहां तक हो गया था आरंभ त्याग, आठवीं प्रतिमा तक अपन ने पढ़ लिया था। अब जो है देखते हैं कि श्रावक इसके बाद क्या करेगा। जिसने आरंभ छोड़ दिया, अब उसने जो परिग्रह रख रखा है उसकी लिमिटेशंस तो पहले ही कर ली थी, अब उसको भी छोड़ देगा, अपने लायक जो डेली यूज के लायक जो चीजें हैं वो भर रख लेगा, बाकी छोड़ेगा, यही इसमें है। बाह्य सुदस सुवस्तु सु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः निर्ममत्वरतः स्वस्था संतोषपरः परिचित्त परिग्रहाद् विरतः दससु बाह्येषु क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान दासी दास कुप भांड प्रमाणाति क्रमः। ये एक सूत्र जी में सूत्र आता है, 10 प्रकार का परिग्रह, वो बाह्य परिग्रह है। उस बाह्य परिग्रह में जो वस्तुएं उसने रख रखी हैं उनमें भी ममत्व भाव को छोड़ देता है और निर्ममत्वता में लीन होता हुआ क्या करता है? स्वस्था, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? आत्मस्थ हो जाना ही वास्तव में स्वस्थ होना है। शरीर की स्वस्थता और अस्वस्थता का विचार तो करते हैं अपन, कभी आत्मा की स्वस्थता और अस्वस्थता का विचार करिएगा। तो आत्मा कब स्वस्थ होती है? जब आत्मस्थ होती है तब स्वस्थ होती है, जब पाप करती है तो अस्वस्थ हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि स्वस्था अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाता, स्वस्थ हो जाता है, संतोष परा। और अब उसने बहुत इतने दिन में बहुत अधिक धीरे धीरे संतोष बढ़ता गया, एक्सट्रीम पर पहुंच गया है। अब कहता है कि कुछ नहीं चाहिए, सब दिया बच्चों को, मेरे जिम्मे तो थोड़ी सी चीजें रख लेता हूं जो मेरे लिए उपयोग में आएंगी, बस इससे अधिक मैं नहीं रखूंगा। सा परिचित्त परिग्रहात विरता, सब ओर से जिसने मेरे चित्त को घेर रखा था, परि आसमंतात गृहणाति इति परिग्रह, जिसने मेरे चित्त को सब तरफ से घेर रखा था उस परिग्रह को छोड़ देता, अर्थात मन से ममत्व भाव को छोड़ देता है। चीजें ज्यों की त्यों रखी रह जाती हैं और चीजें कहीं फेंकने नहीं जाना पड़ता है, अपने मन को उन चीजों से हटा लेना पड़ता है, ये प्रक्रिया वो करता है। घर में है, सब चीजें रखी हैं लेकिन उनमें अब उसका कोई ममत्व नहीं, सब बच्चों की हैं, वो जाने और उनका काम जाने। लेकिन आज चाबी कौन दे पाता है? बहुत चाबी को छीन लेता है बेटा, नहीं देते हो, हम छीन लेते हैं आपसे, अपने हाथ से नहीं दे पाते हम, कि हमने तो बहुत किया, हमने तुम्हें बड़ा कर दिया, तुम्हारी गृहस्थी बसा दी, अब हमको मुक्त करो भाई। ये कहना चाहिए जैसी बेटी की शादी, उसमें लिखा हुआ है कहीं पर, पढ़ा था मैंने कि जैसे ही बहू आई और उसके जिम्मे जो है माँ ने अपने घर की चाबी दी कि ये चौका और चूल्हा तुम्हारे जिम्मे, अब ये पाप मेरे से नहीं होगा, बहुत किया मैंने, और पिता ने अपने दुकान की चाबी दी कि बहुत हुआ, बहुत कमाया हमने, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अब तो पेइंग गेस्ट की तरह हम आपके यहां पर हैं, आप दे दीजिएगा तो खा लेंगे, नहीं तो मुझे कोई चिंता नहीं। इतना संतोष जो है श्रावक के जीवन में आ सकता है, आना चाहिए, जितना बने उतना तो कर ही सकते हैं, एकदम नहीं बने तो थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। कोई चीज छूटती है उससे पहले ही छोड़ दें, कहते तो उससे मूर्छा तो छोड़ ही दीजिएगा, चीज तो एक ना एक दिन छूट ही जाएगी, आप मूर्छा छोड़ पाएंगे तो सार्थक है, नहीं छोड़ पाएंगे तब भी चीज छूट जाने वाली है, इसमें कोई वो नहीं है। तो अपने आप ही कहते हैं कि जब नौमी प्रतिमा धारण करता है तो समस्त परिग्रह का त्याग कर देता है, निर्वाह के लिए जितना भी अपने लिए चाहिए है उतना रख करके सबका त्याग कर। फिर इसके बाद अब ठीक है, आप बेटे के जिम्मे तो सब सौंप दिया है, दुकान मकान सब कुछ सौंप दिया, कुछ नहीं रखा अपने पास, पर बेटा कभी कभी आकर के पूछ लेता है कि पिताजी ये चीज कैसी है, इसको कैसा करना है, हमको अनुभव कम है, थोड़ा तो बता दीजिएगा। तो मम्मी प्रतिमा में अनुमति तो दे देता है वो, लेकिन फिर देखता है कि अब तो समझदार हो गया, अपने आप सब कमा लेता, मेरे से भी अच्छा काम करता है, अब छोड़ो ये अनुमति देना भी छोड़ो। दसवीं प्रतिमा में अब आरंभ की अनुमति देना भी छोड़ देता, खुद नहीं करता था, बेटे को सलाह दे देता था, अब सलाह भी नहीं देता। दसवीं प्रतिमा आ गई, अनुमति आरंभे वा परिग्रहे एहि के सुकर्म सुवा, एहि के सुकर्म सुवा नास्ति खलु यस्य समधि, रनुमति विरतः समन्तव्यः तः समन्तव्यः। हाँ, आरंभ और परिग्रह में या और भी जो लौकिक कार्य है, एहि सुकर्म सु अर्थात संसार के और भी बहुत से लोक व्यवहार हैं, उन सब में पहले अनुमति दे देता था कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, अब कहते हैं उन सब में समधि, अब समता धारण करता है और अनुमति भी देना छोड़ देता है। ये उसका अनुमति त्याग नाम का की प्रतिमा हो जाती। दसवीं प्रतिमा तक व्यक्ति घर में रह सकता है, इसी को अपन वानप्रस्थ आश्रम बोलते हैं कि है तो घर में लेकिन मन कहां है, वन में, वानप्रस्थ। अब हमने जंगल की तरफ दृष्टि कर ली है दसवीं प्रतिमा तक। अब वो ये भी नहीं कहता कि मुझे ये चीज खानी है या ये करना है, कुछ भी नहीं। बेटा आकर के कहता पिताजी खाना खा लीजिए, ठीक, कोई और बुलाता है तो चले जाता, निमंत्रण तो स्वीकार कर लेता है अभी दसवीं प्रतिमा में, लेकिन कहता नहीं है कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा या मेरे लिए तुम भोजन बनाओ। पूछ लेता कोई क्या और क्या क्या चीज लेंगे, बता देगा कि ये चीज लेंगे, बस इतना तो कहेगा कि मैं ये नहीं खाता हूं और ये लेता हूं भोजन के बारे में। इस तरह दसवीं प्रतिमा वाला सब प्रकार के पापों की अनुमति देना छोड़ देता है, निमंत्रण होने पर भोजन ग्रहण कर लेता है। लेकिन ग्यारहवीं प्रतिमा में अब उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा कहलाती है, जिसमें वो अपने लिए निमंत्रण भी स्वीकार नहीं करेगा और बताएगा भी नहीं कि वो क्या क्या लेता है। आपके यहां जाएगा, आप मन शुद्धि वचन शुद्धि बोल के जो सामने दिखाएंगे उसमें जो ग्रहण करने योग्य है उसको नहीं कहेगा कि ये ग्रहण करता हूं, जो छोड़ने योग्य है उसे हटा देगा। बस इसका मतलब जो शेष है वो मैं, अब आप देंगे तो ग्रहण करूंगा, देखना आप जो मैं ग्रहण कर सकता हूं वो मैंने बता दिया, ये नहीं बताया कि मैं क्या ग्रहण करूंगा, जो नहीं ग्रहण करूंगा वो हटवा दिया। तो शेष बचा वो मैं ग्रहण कर सकता हूं, लेकिन कब, जब आप देंगे तब, अपने मन से नहीं उठाऊंगा उसमें से। ये उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा कहलाती। और उद्दिष्ट भोजन जो है, आजकल ये चर्चा बहुत चल पड़ती है कि जब महाराज जी आते हैं तभी चौके लगते हैं, इसलिए महाराज जी के निमित्त से लग रहा है, इसलिए सब उद्दिष्ट है। बड़ा आसान है ऐसा कहने में, जो मुनि नहीं बना उसको क्या दिक्कत है, वो कहने में क्या लगता है। और ग्रंथ बहुत सारे हवाला ववाला देने के लिए, अपने को तो आता नहीं हवाला देना तो, पर ऐसा है नहीं भैया, बहुत स्पष्ट लिखा मूलाचार में कि अपने लिए भोजन बनाना या बनवाना या कहना अनुमति या कि समर्थन, तब वो उद्दिष्ट कहलाएगा। और श्रावक ने अपने हिसाब से किया कराया, उसमें उद्दिष्ट दोष नहीं लगता है। उद्दिष्ट लोग जो हमारे जिम्मे हैं वो इतने ही हैं कि ना हम बना रहे हैं, ना कोई को बनाने के लिए कह रहे हैं, ना कोई बनाता है तो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा बनाया आपने, ऐसे ही बनाया करें, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। इसलिए हम तो बच गए, यही उद्दिष्ट की परिभाषा है और इससे ज्यादा उद्दिष्ट की परिभाषा नहीं है। लेकिन लोग तरह तरह से परिभाषाएं बनाते हैं, और असल में ये है ना कि यो यस्य न जानाति सत्तस्य निंदाम करोति, जो जिस चीज को नहीं जानता वो उस चीज की निंदा करता। और सार्ग्राफ्स रेजनलाइजेशन एक साइकोलॉजी में है, मैकेनिज्म 13 मैकेनिज्म में, लोमड़ी के अंगूर खट्टे, जो जिस चीज को नहीं पा पाता है, अब नहीं पा पाए हैं, दूसरे ने पा ली है तो क्या कहें, अपन नहीं पा पाए तो अब थोड़ा दीनहीन से हो जाते, अरे पाने लायक होती तो हम पा चुके होते, कोई पा ही नहीं सकता आज, ऐसा कह दिया। जब लोमड़ी गई थी और उसको अंगूर नहीं मिले तो वापस लौटी तो उसकी सहेलियों ने पूछा कि गई तो थी अंगूर खाने, तो उसने कहा कि वो सब खट्टे थे, वो अपने काम के मतलब के नहीं, ये नहीं कहा कि 17 दफे कूदे नहीं मिल पाए, अब जी कैसे कह सकते, एकदम कोशिश तो बहुत करी लेकिन नहीं मिले, तो ऐसा कह दिया कि खट्टे थे, अब नहीं बन पाए हैं मुनि, तो ये कह दिया कोई बने नहीं सकता भैया, बन सकता होता तो हम नहीं बन जाते, का बुद्धू है का हम, अब जी नहीं कह सकते कि हम नहीं बन रहे, मुश्किल ये है। तो ऐसा उद्दिष्ट त्याग वाली बहुत मैंने व्याख्याएं किस किस तरह से कर ली गई हैं। मैं किसी पर यह नहीं कह रहा हूं कि गलत कहते हैं, लेकिन अपने मन की उलझन निकालो। इतनी बड़ी उलझन क्या, इतने सारे जो आचार्य भगवंत हैं और विचरण करते हैं, पंचम काल के अंत तक साधु विचरण करेंगे, क्या वो सब ठप हो जाएगा? आचार्यों का लिखा हुआ, आचार्यों ने कुछ सोच के तो लिखा होगा, इसलिए इस परिभाषा को यहीं तक सीमित रखना चाहिए कि मुनि महाराज ने अपने लिए ना बनाया है, ना उन्होंने किसी से बनाने के लिए कहा है, और ना उन्होंने बने हुए की प्रशंसा करी है, इसलिए वे तो उद्दिष्ट से मुक्त हो गए। हमने मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि बोल करके उनको दिया है, और जब कोई अतिथि आएगा भैया तो चार चीजें ज्यादा तो बनती ही है। आप किसी सामान्य को भी बुला लीजिएगा, उसके अनुरूप अगर आप किसी वृद्ध को बुलाएं अपने घर में और कहें कि मैं तो आपको चना खिलाऊंगा, मैं क्योंकि मैं भी चना खाता हूं, मैं जो खाता हूं वही आपको खिलाऊंगा, आपके निमित्त अलग से कुछ नहीं करूंगा, तो उन वृद्ध बाबा जी को आप चना कैसे खिलाएंगे? उनको तो चना भी खिलाना है तो खलबट्टा में पीस करके और फिर चूरा बना करके खिलाना पड़ेगा उनको। अब ये तो आपने उन्हीं के लिए किया, तो फिर तो वो उद्दिष्ट हो गया क्या? नहीं। और फिर सबसे बड़ा मजा कि आप घर से यहां तक काय के लिए आए हैं, मैं प्रवचन करूंगा मेरे निमित्त से आए ना, तो आपने जितनी हिंसा करी वो सब मेरे मत थे, बड़ा मजा है। फिर तो अगर ऐसा होने लगे तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आप ये बहुत स्पष्ट मान के चलिए। गर्म पानी मुनि महाराज जी लेंगे, श्रावक तो गर्म पानी पिएगा नहीं, तो वो गर्म करेगा तो वो मुनि महाराज जी के लिए। चौथे काल में नहीं करते होंगे क्या गर्म? चौथे काल में सब श्रावक गर्म पानी पीते हैं था क्या? क्योंकि श्रावक जो करे वही साधु को देना चाहिए। तो अब जब साधु को सर्दी हो गई तो अब सर्दी की दवाई तो बना नहीं सकते, क्योंकि जब श्रावक को सर्दी हो तो अपने लिए बनाए फिर वो साधु को दे। तो ऐसे भैया वृत्ति नहीं हो पाई, कुछ भी संभव नहीं है, ये सारी प्रक्रिया गड़बड़ा जाएगी, इसलिए इसको उद्दिष्ट नहीं मानते। उन्होंने नहीं कहा अपने लिए, बस इतना ही, और उनके निमित्त से वो स्वयं शुद्ध भोजन करता है, उन्हें तो शुद्ध भोजन देता ही है, स्वयं भी करता। ये उद्दिष्ट त्याग के मायने हैं। ये ग्यारहवीं प्रतिमा में इलक छुल्लक जो बनते हैं उनके लिए भी है, फिर मुनि महाराज जी के लिए तो बहुत बात है ही। ग्रह तो मुनिवन मित्वा रूपकंठे व्रतानि परिग्रह्य वैक्षासनस्तपस्यन् नुत्कृष्टश्चेलखण्डधरः। ग्रह तो मुनिवन मित्वा, ग्रह से निकल करके मुनियों के वन में, अर्थात जहां मुनिजन रहते हैं, मुनिजन वन में ही रहते हैं ऐसा नहीं लगाना, क्योंकि पंचम काल में लिखा हुआ है कि मुनि जन वन में नहीं रह पाएंगे, ना उन्हें रहना चाहिए, आचार्य कुंदकुंद स्वामी की आज्ञा है, ये ध्यान रखिएगा। वो कहां रहें? उत्तम सहनन नहीं है, इसलिए हीन सहनन की वजह से वसदी में रहें, या सार्वजनिक किसी की जिस पर मालकियत नहीं है उस स्थान पर, शून्य ग्रह में, विमोचित आवास में, ये सब उनके रहने के स्थान बताए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि कितनी सिर्फ उद्देश्य क्या है, कर्मों की निर्जरा का, ऐसे स्थान पर रहिए। अभी हम लोग कल ही पढ़ रहे थे मूलाचार प्रदीप में, कैसे स्थान पर रहिए जिसमें कि आपकी साधना हो, कर्मों की निर्जरा हो। बस कर्मों की निर्जरा के उपाय के लिए हमें स्थान खोजना है, स्थान से हमें कोई विशेष वो नहीं है कि ऐसा और वैसा ही होना चाहिए, ऐसा स्थान हो जिसमें धर्म ध्यान हो सके, कर्मों की निर्जरा हो, जहां ऐसा स्थान ना हो वहां छोड़ देना चाहिए, ये लिखा। तो कहते हैं मुनियों के वन में जाकर के गुरु कंठे, गुरु के निकट पहुंच करके व्रतानी परिग्रह, ग्यारहवीं प्रतिमा ग्रहण कर लेता है, और भिक्षा पूर्वक भोजन करता हुआ तपश्चरण करता है। एक श्रावक भी उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है। चेल खंड धरा, अर्थात वस्त्र का एक खंड, पूरा वस्त्र नहीं रखता, एक चादर रख ली, एक ठो लंगोट रख लिया, कौपीन रख ली, बस इतना तो ये छुल्लक जी हो गए। और अगर वस्त्र का खंड, वस्त्र का त्याग कर दिया, अकेली कौपीन रखी है, तो वो एलक कहलाएंगे। इस तरह एलक और छुल्लक ये दोनों ग्यारहवीं प्रतिमा को धारण करने वाले श्रावकों में सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। दसवीं ग्यारहवीं प्रतिमा वालों को उत्कृष्ट श्रावक माना है, सातवीं आठवीं नौवीं प्रतिमा वालों को मध्यम श्रावक माना है, छठी प्रतिमा तक जघन्य श्रावक कहलाते हैं। इस तरह श्रावकों में भी तीन भेद किए गए हैं। अब आखिरी में उपसंहार कर रहे हैं समंतभद्र स्वामी, और कह रहे हैं कि हमारे जीवन में कौन हमारा शत्रु है और कौन हमारा बंधु है, और इस ग्रंथ के समापन के लिए हमें क्या अपने जीवन में लाना चाहिए। पाप मरातिर धर्म,
बंधुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन् समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति।
कितनी बढ़िया बात कही कि पापं जीवस्य अराति। अगर कोई शत्रु है तो वो पाप है, सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना पाप। और दूसरे शत्रु तो बहुत एक ही जीवन का बिगाड़ करेंगे भैया दूसरे शत्रु तो, लेकिन ये पाप रूपी शत्रु तो हमारे जन्म जन्म का बिगाड़ करने वाला है, कई कई जीवन का बिगाड़ करता है, इसलिए बड़ा शत्रु है। धर्म है बंधु, और अगर कोई धर्म है तो वो वही हमारा बंधु, अगर कोई बंधु है तो वो हमारा धर्म है, वो आत्मधर्म ही हमारा बंधु है। या जो हम धर्म के कार्य करते हैं वही पुण्य के कार्य जो हम करते हैं वे सब हमारे बंधु हैं। इस प्रकार निश्चिन वन ऐसा निश्चय करके श्रावक यदि समयम जानीते, श्रावक यदि आत्मा को जानता है, और आगम समय का मतलब आत्मा भी और समय का मतलब आगम भी, आगम को और आत्मा को जानता है, तरही ध्रुवम श्रेयो ज्ञाता, तब तो मानिएगा वही कल्याण को जानने वाला है। और कोई कल्याण को जानने वाला नहीं, सोचा जाने ही कल्याणम, सोचा जाने ही पावगम, उभयम पि जाने ही सोचा जम श्रियम तम समाचरे, सुनकर के ही पाप का मार्ग जाना जाता है, सुनकर के ही धर्म का मार्ग जाना जाता है। बुद्धिमान वो है जो दोनों को सुनता है और उसमें से जो श्रेयस्कर है उसे ग्रहण कर लेता है, बाकी को छोड़ देता है। वही कह रहे हैं कि इतने दिन से आपने सुना धर्म, तो धर्म तो हमारा बंधु है और पाप हमारा शत्रु है, बड़े से बड़ा हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने कल्याण के लिए धर्म को अंगीकार करके और पाप से मुक्त होना चाहिए। एन स्वयं बीत कलंक विद्या, एन स्वयं बीत कलंक विद्या, दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम, दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम, नीतस्तमायाति प्रतीक्षयेव, नीतक्षमायाति प्रतीक्षयेव, सर्वार्थ सिद्धिस् त्रिसुविष्टपेषु, सर्वार्थ सिद्धिस् त्रिसुविष्टपेषु। एन स्वयं बीत कलंक विद्या, जिसने अपने आत्मा को, स्वयं को अर्थात अपने आत्मा को कैसा, बीत कलंक विद्या, निर्दोष ज्ञान, निर्दोष दर्शन और निर्दोष चारित्र, इनके रत्न करंड भावम, इन रत्नों के पिटारे के रूप में बना लिया है। एक तो रत्नों का पिटारा बाहर होता है, ये कह रहे हैं कि जिसने अपनी आत्मा को ही रत्नों का पिटारा बना लिया, वो कौन कौन से रत्न रख लिए उसमें, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, ये तीन रत्न अपने आत्मा के पिटारे में जिसने रख लिए उसी के लिए है ये रत्न करंडक श्रावकाचार। अब वो क्या, तो कहते हैं कि त्रिसु पिष्टेशु, इन तीनों लोकों में अगर वो तीनों लोकों का स्वामी होना चाहे तो अब तीनों लोकों का स्वामी हो गया वो, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न उसने अपने आत्मा में संजो के रख लिए हैं। सर्वार सिद्धि आयाति, और वो जो चाहे वैसी सिद्धि हो सकती, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ, इन चारों पुरुषार्थों की सर्वार्थ सिद्धि, सब प्रकार की सिद्धि उसे प्राप्त हो सकती है। दोनों चीजें कह दी कि इस रत्नगण श्रावकाचार को जो कंठस्थ करके आत्मा में रख लेता है उसे भी सब सिद्धि हो सकती, और जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपने जीवन में लाता है उसके लिए तो सारी सिद्धियां अनायास हो जाती हैं। आखिरी कह रहे हैं कि ये धर्म या रत्नगण श्रावकाचार कैसा है। सुख यति सुख भूमि कामिनम कामिनी व, सुख भूमि कामिनम कामिनी व, सुतमिव जन्नी माम शुद्धशीला भुनक्तु, माम शुद्धशीला भुनक्तु, कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता, गुणभूषा का संपुनीता, जिन पति पद पद्म प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी, प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी, दृष्टि लक्ष्मी, जिन पति पद पद्म प्रेक्षणी, जिनेंद्र भगवान के चरण कमल को देखने वाली जो दृष्टि है, अर्थात सम्यक दर्शन की अंत में इतनी बढ़िया प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं, सम्यक दर्शन रूपी जो लक्ष्मी है, दृष्टि लक्ष्मी कहा उसे, सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी जो कि जिनेंद्र भगवान के चरणों का दर्शन करने वाली है, वो क्या है, कहते सुख की भूमि है। सुख भूमि माम सुखयतु, वो सुख की भूमि होते हुए मेरे लिए सुखी करे। किस तरह से सुखी करे? जैसे कि सुख भूमि कामनी कामनी इव, जैसे कि कोई पुरुष अगर अपनी जीवन साथी ढूंढना चाहता है और उसे पा लेता है तो उसे जो सुख प्राप्त होता है, अब क्या करें, संसारी जीव तो ऐसे ही सुख को जानता है, तो वो कहते कि जैसे उसे अपने जीवन साथी के पाने का सुख मिलता, कहते वैसा सुख मुझे ये भगवान के सम्यक दर्शन रूपी जो लक्ष्मी है वो मुझे वैसा सुख दे। और कहते शुद्ध शीला भुनक्तु, और जो निर्दोष शील व्रत इत्यादि हैं वे मेरे लिए माँ की तरह हैं और वे मेरी बेटे के समान रक्षा करें। जैसे कि माँ पुत्र की रक्षा करती, मातेव वालस्य तानु शास्ता, हे जिनेंद्र भगवान, जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती ऐसी मेरी भी रक्षा करना, ये सम्यक दर्शन मेरी वैसी ही रक्षा करे और मुझे वैसा ही सुख देवे। और गुणभूषा कन्या संपुनितात, और जैसे कन्या जो है अपने कुल को अगर चारित्रवान होती है तो अपने कुल को जैसा सुख देती है वैसा ही सुख ये मुझे सम्यक दर्शन देवे। इस तरह से तीन बातें कह दी। कुल में गुणभूषा कन्या, जैसे कि गुणों से आभूषित कन्या जो है अपने कुल की शोभा या उसको सुख पहुंचाती है, जैसे माँ जो पतिव्रता है वो अपने पुत्र की रक्षा करके उसे सुख पहुंचाती है, और जैसे जीवन साथी अपने जीवन में एक दूसरे के लिए परस्पर सुख दे करके अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक इसी तरह से ये जिनेंद्र भगवान की जो सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी है वो मुझे भी सुख देवे और मेरे जीवन को आनंदित करे, या कि मेरे जीवन को जो मुझे प्राप्त करना है वो दे। बहुत दिन तक भैया मेरे से जितना बना मैंने अपना फर्ज पूरा किया, और इस ग्रंथ के बारे में हो सकता है कि बीच बीच में प्ररूपण करते समय कोई बात कड़ी भी निकल गई, संभव है, छदमस्त हूं, उतना ज्ञान भी नहीं है, पर फिर भी जितना मेरे से बना जितना मैंने सीखा वो आपको बताया, इसमें कोई गलती हुई हो मेरे व्यवहार से भी तो उसके लिए भी जिनवाणी माँ मुझे क्षमा करें, आप सब भी क्षमा करें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्या।
कल 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को प्रवचन स्थगित रहेंगे। 31 अक्टूबर को प्रातः 6:30 बजे इसी स्थान पर भगवान महावीर स्वामी की पूजन अभिषेक एवं निर्माण लाठी चढ़ाया जाएगा। तत्पश्चात मुनिशन के वर्षा योग निष्ठापन विधि प्रारंभ होगी, मुनिशन के आशीष वचन होंगे, और इसके बाद फिर श्री जी की शोभा यात्रा जैन मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई यहीं पर वापिस आएगी। 2 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे सावरकर चौक के मैदान में पिच्ची का परिवर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपसे निवेदन है कि आप इस अधिक संख्या में बताएं। जहां जहां हमने वैसे कोशिश की है कि सभी मंदिरों में हमने अपनी कार्यक्रम की सूचना पत्र पहुंचा दिए हैं, अगर आपके क्षेत्र में ये सूचना पत्र नहीं पहुंचे हो तो कृपया जांच हमें दे दें। और आप गुरुवर धन्यवाद की स्थिति
गुरुवर शाश्वत सुख दर्शन जगनाग्नि स्वरूप तुम्हारा है, जगदीश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। भाव शिव के निष्कंटक हत में विषकंटक होता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो।
तरुतल वर
की घड़ियों में टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनाश्वर मणिया निर्मल देव तुम्हें प्रणाम हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम हे शांति त्याग के मूर्तिमान